ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम शुरू करें, आज जो बाबा ने मुरली में कहा था कि हम जब मीठा बनते जाते हैं, देही अभिमानी बनते जाते हैं, तो हमारे अंदर की चमक हीरे जैसी बनती जाती है। तो पहले जो गीत सुनेंगे उसी के भाव में हम टिकेंगे कि मुझे डायमंड बनना है, हीरा बनना है। और जो हीरा होता है उसकी चमक नेचुरली सब जगह जाती है, उसको दिखाना नहीं पड़ता कि मैं हीरा हूं। मेरा भी जो आज शेयरिंग मैं करूंगा, ज्यादातर व्यक्ति को परेशानी इसीलिए होती है कि वो अपने को प्रूव करना चाहता है और इसी के कारण अटैच हो जाता है। और आज का जो टॉपिक है डिटैचमेंट, तो इसीलिए हीरे जैसा बनना है तो मुझे देही अभिमानी बनना है। ओम शांति। एक बहुत अच्छी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जो मैसेज को कन्वे करेगा कि मैं क्या शेयर करने वाला हूं। एक बहुत अच्छी चमकती ओस की बूंद ड्यू एक पहाड़ी पर रहती थी, चमकती रहती थी। जैसे ही सूरज की किरण पड़ती थी तो वो उसका ब्राइटनेस सब लोग देखते थे। एक बार उसको लगा कि नीचे जाकर मैं देखूं इस मैदानी इलाकों में क्या है, तो उसने अपनी जर्नी यात्रा शुरू की। यात्रा के बीच में उसको जंगल मिले, जंगल में पेड़ों की खुशबू बहुत अच्छी थी, लकड़ी की कलर की सुगंध, कलर भी था भूरा भूरा। तो उसने लकड़ी को बोला मुझे तेरा कलर दे दे, तो लकड़ी ने बोला मुझे तेरी शाइनिंग दे दे, चमक दे दे। उसने अपनी चमक दी, उसने अपना कलर दिया और उसकी शाइनिंग थोड़ी ब्राउन कलर की हो गई। और फिर नीचे चली तो फिर बगीचे मिले, बगीचे में फूल थे, फूलों को फूल देखकर बहुत खुश हुई, बोला मुझे तुम्हारी सुगंध दे दो। तो फूलों ने भी कहा मुझे तुम्हारी शाइनिंग दे दो। तो उसने अपनी शाइनिंग एक्सचेंज की और सुगंध ली। धीरे धीरे करते प्लेन में पहुंचने तक उसने कई चीजें एक्सचेंज कर ली। जब वो मैदान में पहुंची तो वो एक शाइनिंग ओस की बूंद से चेंज होकर एक मेली भारी सी बूंद जिसकी कोई शाइनिंग नहीं थी वो बन गई। एक दिन उसने फिर एक ओस की बूंद को चमकते हुए पेड़ों पर देखा और उससे पूछा तुम कौन हो। यही हमारा हाल सत्युग से होता है। सत्युग से जब हम अपना पाठ परमधाम से जाकर अपनी शाइनिंग लेकर, सतोगुण लेकर, इटर्नल क्वालिटीज को लेकर, अनादि क्वालिटीज को लेकर सत्युग में उतरते हैं, सत्युग में हमें आदि क्वालिटीज मिलती हैं, अनादि और आदि का कॉम्बिनेशन लेकर हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और जैसे ही द्वापर आता है तरह तरह के कलर सुगंध हमारे में हमको अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और कलयुग के अंत में हम भी भूल जाते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और वही परमात्मा आकर हमें सबसे अच्छी मेथड सिखाते हैं कि तुम भी एक चमकते हुए हीरे हो, सितारे हो। तो बाबा पहला ही पाठ डिटैचमेंट का सिखाता है कि कैसे हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को चेंज करते जाएं, बदलते जाएं। तो मैं कुछ मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंस तीनों को कंबाइन करके ये लेक्चर को ये शेयर करूंगा। लेक्चर तो नहीं कहूंगा, जो बाबा ने हम सभी को सिखाया है उसको दूंगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का लास्ट पार्ट है, लास्ट लेसन है, जो गीता में भी कहा 18 चैप्टर में, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। यानी अगर ये आ जाता है तो हम अल्टीमेट हम पहुंच गए, अगर ये नहीं है हमारे पास तो अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। चाहे हम बाहरी दुनिया को तो छोड़ देते हैं, पर ये देखा गया जब व्यक्ति ज्ञान की लाइफ शुरू करता है तो कई जंजीरों को बांध देता है। आयरन चेन्स को छोड़ना बहुत इजी है, वो इजी है, पर गोल्डन चेन्स से छुटकारा पाना सबसे डिफिकल्ट है। इसीलिए समर्पित भाई या घर गृहस्थ में जो रहते हैं उनके हम यहाँ पर्सनालिटीज को देखते देखते समझते हुए अपने आप में भी परिवर्तन लाया, क्योंकि देखा कि ज्ञान में आने के बाद भी कईयों की जो संस्कार हैं, पर्सनालिटीज हैं, वो बहुत परिवर्तन न हो पाती है, वो कुछ न कुछ उसका रूट कारण होता है। तो उसको हम कैसे सहज रीति से छुटकारा पाएं, और जो बाबा हमसे चाहता है कि हम कर्मातीत बन जाएं, कि किसी भी कर्म का इफेक्ट मेरे ऊपर ना आए। कर्मातीत का अर्थ ही होता है कि कर्म करना है, कर्म से भागना नहीं है, ड्यूटीज बजाना है, ड्यूटीज को और अच्छा बजाना है। क्योंकि दूसरी गलती देखी जो घरग्रस्त में रहते हैं या समर्पित भी हो जाते हैं, ड्यूटीज को ना ध्यान देकर केवल एक लाइन में चलते हैं, जबकि हमारा जो ज्ञान परमात्मा ने, बाबा ने हमें सिखाया है वो टोटली डिफरेंट है। भागने का काम, एस्केप करने का काम द्वापर से होता था, कि जब व्यक्ति को प्रॉब्लम होता था तो वो भागता था जंगल की तरफ, या कुछ वायलेंट या डाकू या कुछ बन जाता था जब उसके अंदर असंतोष जागृत होता था। पर बाबा ने हमें ये सिखाया कि जो पार्ट आपको दिया गया है, जहां मैंने तुम्हें भेजा है संगम पर, वहीं मैं रहकर उस पार्ट को अच्छी तरह प्ले करूं और अच्छा बजाऊं, जिससे लोग कहें कि ब्रह्मा कुमारी इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई डिफरेंट है। अगर हम अपने पार्ट को, ड्यूटीज को, प्रोफेशन को, कैरियर को ठीक रीति नहीं बजाते हैं तो लोग कहेंगे ये भी भागे हुए लोग हैं। पार्ट अलग अलग है पर उसको अच्छी तरह प्ले करना है। सरेंडर हो गए वो एक अलग पार्ट है, और जो घर गृहस्थ में है वो एक अलग पार्ट है। हमें पार्ट को भी कंपेयर न करना है, मैक्सिमम अटेंशन यही रखें कि जहां मैं रहूं वहां किसी भी चीज से चिपक नहीं जाऊं, अटैच नहीं हो जाऊं। इसीलिए जैन मुनीस में ये प्रथा है कि वो लोग कभी भी एक जगह नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब हम चलते रहते हैं तो हमारा लगाव एक वस्तु से नहीं होता। पर बाबा ने हमें उन चीज से भी छुटकारा दिलाया, कहा कि आप जहां भी रहिए पर हमें केवल मन और बुद्धि का गेम खेलना है। पूरा अटैचमेंट आता है मन और बुद्धि से। अगर दोनों में दोस्ती ठीक नहीं है, दोनों में मन मुटाव है, प्रॉब्लम है, हार्मोनी नहीं है, तो डर पैदा होता है और डर से ही अटैचमेंट चालू होता है। तो अगर मन और बुद्धि ठीक है, क्लीन है, बुद्धि डिवाइन है, जो बाबा ने कहा कि मैं आकर दिव्य बुद्धि बनाता हूँ, तो मन में जो भी होता है वो बुद्धि उसको क्लीन कर देती है। तो इसीलिए लास्ट स्टेज जो होती है कर्मातीत की या डिटैचमेंट की, वो ये रहती है, मन में जो विचार आए उसको मैं एक सेकंड में कर दूं। मन ने सोचा, बुद्धि ने किया, मन हल्का, बुद्धि हल्की, और उसका इफेक्ट संस्कार के ऊपर ना हो। तो जब मन, बुद्धि, संस्कार तीनों लाइट रहते हैं तो हमारी लाइट नेचुरली बाहर होगी। अगर मन और बुद्धि में झगड़ा है, कवरिंग है, पर्सनालिटी ब्लॉक कर रखी है, तो डेफिनेटली हमारी लाइट बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए मन और बुद्धि, सोचा, किया, विचार आया और किया। कोई भी पास्ट और कोई भी फ्यूचर मुझे तंग न करे। ज्यादातर व्यक्तियों का पास्ट उसको खींचता है या फ्यूचर का उसको खींचता है। डर आदमी को आज सबसे ज्यादा बाहरी दुनिया में फ्यूचर का है, कि वो फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है। पर हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, और बाबा ने भी बताया कि हम जो गेम खेल रहे हैं वो गेम नोन से अननोन है। मैं यहां बैठा हूं, मुझे मालूम है ये सेकंड क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। चाहे हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाबा कभी ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कब मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा। अगर बाबा ये बता देता क्वेश्चन पेपर कब दूंगा, तो शायद फिर इजी गेम हो जाता, फिर तो चिंता नहीं थी। एक घंटे पहले भी बाबा ने कहा लास्ट मुरली में कि नहीं बताऊंगा। अब हम सभी बच्चे बाबा के बनते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बाबा हमें बता दे, बाहर वालों को ना बताए। पर बाबा ने कहा तुम्हें भी नहीं बताऊंगा, यहां वालों को भी नहीं बताऊंगा, सरेंडर वालों को भी नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। ये आपका इंट्यूशन कितना अच्छा है, आपके अंदर की दिल की सफाई कितनी अच्छी है, आप यज्ञ में समर्पित रूप किस तरीके से जी रहे हैं, अंदर और बाहर क्लियर है, तो तब बाबा का वो मैसेज आप कैच करेंगे और चल पड़ेंगे। इसीलिए बाबा बहुत काल का पुरुषार्थ, नष्ट मुआ स्मृति लब्धा, डिटैचमेंट का कराता है। तो अभी फिर से हम डिटैच होते हैं, सब्जेक्ट को अब ओपन करेंगे। जैसे मुकुल भाई ने कहा ये पीएचडी का सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, तो मैं भी आपको लेवल को बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि आप सभी स्पार्क के स्टूडेंट्स हैं, स्पार्क वाले रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं लो लेवल से हाई लेवल पे ले जाऊंगा। जनरली ये लेसन मैं इसे कराता नहीं, पर आप लोगों को देखकर मैंने सोचा कि इस गहराई तक ले जाएं। तो पूरा आप अपना फोकस रखना, सभी फाइल्स अभी बंद कर देना, बाहर की, सेंटर की, घर की, और फोकस करके अपनी एनर्जी को रखना, तो ये सब्जेक्ट आपको इजी वे में डाइजेस्ट हो सके। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी वस्तु को देखते हैं, सीन को देखते हैं, कहते हैं क्यों, व्हाई, और मैं सोचता हूं कि मैं कोई भी चीज को देखूं क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कोई भी सीन को अगर हम क्यों में देखते हैं तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन चालू हो गया, और मैं ये कह रहा हूं क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्योंकि 5000 वर्ष में हर सीन नया आता है, रिपीट होता है, फिर 5000 वर्ष बाद वो सीन आएगा। अगर हम उसको पास की मेमोरी से उस सीन को देखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा, या फ्यूचर के उससे कलर देते हैं तो प्रॉब्लम आएगा, पर मैं हर दिन को, हर सीन को, हर मोमेंट को नया देखूं। अगर हर सुबह को मैं उठकर अपने आप से कहता हूं आज का दिन कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा हूं, मेरा पाठ कितना अच्छा है, आज के दिन बाबा ने मुझे बहुत अच्छा पार्ट दिया है, जो भी सीन आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। तो एक्साइटमेंट होता है, थ्रिलिंग होता है। अगर हम सोचें वही का वही दिन, वही कोर्स, वही मुरली पढ़ना, वही कार्य करना, तो फिर डेफिनेटली अलबेलापन, डिप्रेशन आता जाएगा। इसीलिए बाबा ने जो गेम सिखाया, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन गेम, सर्टेन गेम नहीं बताया, अनसर्टेन। और अनसर्टेन गेम वही जीतता है जो खुद शक्तिशाली है, जिसकी खुद की कैपेसिटी ज्यादा है, फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, फाइनेंशियल एंड में आता है स्पिरिचुअल कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं गैस, जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम। जिसकी गैस अच्छी है वो मैच जीतेगा, चाहे वो ज्ञान में है चाहे ज्ञान में नहीं है। हर एक अपने अपने लेवल पे गैस को डेवलप करता है, और गैस उसी की ठीक होगी जो अपने ऊपर अटेंशन रखता हैगा। तो ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, फ्लो, लाइफ इज ए फ्लो। ये जिंदगी क्या है, एक फ्लो है, एनर्जी फ्लो कर रही है, बाहर फ्लो कर रही है, बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पूरे बॉडी में पंप कर जा रहा है, हजारों माइल्स ब्लड ट्रेवल करता है। तो एवरीथिंग इन यूनिवर्स फ्लोस, हर चीज जीवन में फ्लो होती है। अब हमारा काम क्या है कि इस फ्लो को फ्लो होते देना, इंजॉय करना, फ्लो को पकड़ना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, पानी को मुट्ठी में लेकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, मैं कंट्रोल करूंगा पानी को। कितनी देर कंट्रोल करेंगे, धीरे से पानी बाहर आ जाएगा। उसी पानी की धार में मैंने हाथ लगा दिया, पानी मेरे से टकराएगा, इंजॉय करेगा। फ्लो, उसको मैं मुट्ठी में कंट्रोल करूं, नहीं होगा। उसी फ्लो को मैं इंजॉय करूं, हाथ रखकर घंटों बैठ सकता हूं। इसी तरह से जीवन में भी मुझे इस फ्लो को इंजॉय करना है, फ्लो को रोकना नहीं है। विवेकानंद ने कहा, गीता ने कहा, डू नॉट कंट्रोल लाइफ, बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड। लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये देखा गया, जितनी भी खुशी गायब होती है, ऑल अनहैप्पीनेस अराइज इन ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल एंड इवेंट्स। जितनी भी खुशी जो गायब होती है वो काय में चली जाती है, लोगों को कंट्रोल करने में, सिचुएशन को कंट्रोल करने में, इवेंट्स को कंट्रोल करने में, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसीलिए कहा कि आप फ्लो को इंजॉय करिए। देखिए, आप पांचों तत्व फ्लो करते हैं, पानी, एयर, अर्थ, और चौथी चीज है डिवाइन एनर्जी भी। डिवाइन वही है जो फ्लो करता है, जो ब्लॉक हो गया वो डिवाइन है ही नहीं। इसीलिए एक बहुत अच्छा कोटेशन है, सम पीपल दे से इनिशियली वी आर ए स्पिरिचुअल, वी आर ए ह्यूमन बींग विथ ऑकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हम व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं, पर कभी कभी हमें आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। पर जो बाबा ने ज्ञान दिया, अभी हम कह सकते हैं वी आर ए स्पिरिचुअल पर्सन विथ ऑकेजनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो अगर मैं डिवाइन हूं तो मेरी एनर्जी फ्लो करना चाहिए। अगर डिविनिटी मेरे में नहीं आई है तो ब्लॉक करूंगा, और ब्लॉक करूंगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। पांच तत्वों को ब्लॉक कर सकते क्या? एयर को मैं कहूं कंट्रोल करूं, नहीं होगा, चलती जाएगी। तभी हम यूनिवर्स में देखते हैं बर्ड्स, पक्षी, एनिमल्स कितना नेचुरल चलते हैं, उनको टेंशन नहीं होता, वो अपने आप बर्ड सीख जाता है फ्लाई करना। वहां फ्लाइंग क्लब में कोई नहीं जाता, उनके कोई फ्लाइंग क्लब नहीं है, फिर भी उसमें वो नेचुरल इनहेरेंट कैपेसिटी है। पर हम क्या होता है कि हम धीरे धीरे एक्वायर्ड कैपेसिटी से जो डर पैदा होता है एक्वायर्ड करते जाते हैं, तो हमारी जो इनहेरेंट रिदम है वो गायब हो जाती है। जो हम परमधाम से लेकर एक इनहेरेंट रिदम लेके चले थे, इस बॉडी में आए थे, वो रिदम हमारी धीरे धीरे चेंज होकर बाहरी चीजों पर आधारित हो जाती है, जिसको कहा गया एक्वायर्ड पोजीशंस पे हो जाती है। और इसके कारण हम दुखी होना चालू हो जाते हैं। इसलिए डिटैचमेंट का अर्थ है स्ट्राइविंग से अराइविंग तक। अब ये एक बहुत अच्छी बाबा ने हमें सिखाई, पहली वाली दिखाना, ये बहुत अच्छा बाबा ने हमें सिखाया जो किसी भी शास्त्र वालों ने, गुरुओं ने नहीं सिखा पाए, कि आपको सब चीजों से डिटैच होकर कार्य करना है। मैंने जैसे कहा द्वापर से जो फिलॉसफी आई वो थी कि एक चीज करो, भाग जाओ, छोड़ दो, पर बाबा ने हमें कहा छोड़ना भी कुछ नहीं है और डिटैच होना, ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है डिटैच ये लोग बोल रहे हैं तो सब कुछ छोड़ना है, बाबा का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। बुद्धि से हमें किसी भी चीज के ऊपर मोह पैदा नहीं हो कि ये मेरी चीज है, आए और माए नहीं आए, आए और माए आया तो माया आई, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। जिसने आए और माए को इनवाइट किया वो आएगी आएगी, वो तो बैठी हुई है, तैयार है, जैसे ये बोले मैं घुसी, जहां बोला ये मेरा घुसा, और जहां मैंने बोला कि नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं तो ये हूं, जीरो आया था, जीरो से आए थे। आज हम सभी लोग यज्ञ में आए, कुछ नहीं लेके आए थे, यज्ञ नहीं हमें दिया, बाबा ने ही हमें सिखाया, हम सब जीरो थे, कुछ नहीं था, बाबा ने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर लिया कि नहीं नहीं मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो, अभी तुम्हें नहीं मालूम पर मुझे मालूम तेरा फ्यूचर में क्या यूज होगा। आज हम सब भी अपना एनालिसिस करें तो यही देखेंगे कि बाबा ने हमारे इसको सब देखते हुए सिलेक्ट किया कि इसका यूज मुझे कब और कैसे करना है। तो आए और माए ही ईगो पैदा करते हैं, यही सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है ज्ञान मार्ग में। बाहर की दुनिया में ठीक है, पर ज्ञान में अगर ये आ गया, मेरी क्लास, मेरा ज्ञान, मेरी बुक, मेरी कैसेट, मेरा ये, तो गए, फिर गिरना चालू हो गए, वो जो क्वालिटी भी थी वो खत्म हो गई। लोग आपको कहेंगे वाह 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 आपकी, आप चढ़े, और जिस दिन वाह वाह करना बंद कर दिया आप डाउन हो गए। जो वो कहानी मैंने सुनाई वाह वाह वाली स्वामी जी की, स्वामी जी जंगल में रहते थे, बहुत तेज था उनका, लोग गांव वाले उसको खाना खिलाते थे, खाने के साथ कहते थे वाह स्वामी जी आपका तेज कितना अच्छा, वाह स्वामी आप कितने अच्छे हो। चार पांच एक हफ्ते के बाद उसके एक चेले ने गांव वालों को बोला कल से आप खाना लाना पर वाह वाह नहीं बोलना। गांव वालों ने कहा ठीक है आप समझ जाओगे स्वामी कितने हैं। तो उन्होंने चौथे दिन से उसको खाना लाते थे, रख देते, चुपचाप बैठ जाते थे। स्वामी जी बेचारे एक दिन खाए, दो दिन खाए, अब वो तो एडिक्टेड हो गया था ना वाह वाह पर, वाह वाह और खाना, अब वाह वाह नहीं मिला, पांचवे दिन से सूखना चालू हो गया और डिप्रेशन में चला गया। तो ये वाह वाह का भी एडिक्शन हमें ना हो। सबसे बड़ी सोने की जंजीर ये वाह वाह की ही ज्ञान में आती है, मेरी विशेषता, मैं ये महारथी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। यज्ञ में हम देखें, यज्ञ चलता ही रहेगा, यज्ञ कभी रुकेगा नहीं। सबसे बड़ा डिटैचमेंट मुझे सीखना है, हम सभी को सीखना है, मेरे बिना भी यज्ञ चलेगा, मैं रहूं या ना रहूं चलेगा, मैं अटैच हो जाऊं कि मैं यहां हूं तो चीजें होगी, प्रॉब्लम। कई बार मैंने देखा यहां फोन करती हैं, बहनें फोन करती है, पेरेंट्स फोन करते हैं, बच्चों को फोन करते हैं, बड़ी बहन छोटी बहन को फोन करती है, छोटी बड़ी को करती है, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि वो सेंटर खत्म हो जाएगा, अगर वो यहाँ है तो सेंटर चलेगा नहीं। आप सबने देखा आप यहाँ आए, बड़ी बहनें आई, सेंटर चलता रहेगा, कोई दूसरा आ जाएगा। ये तो एक चांस दिया गया है इस यूनिवर्स में मुझे इस समय के लिए, इसलिए हम सब ने लोन लिया है, ओनरशिप नहीं लें, कोई भी इस दुनिया में ओनर नहीं है, आज ये बॉडी है कल नहीं है, ये तो टेम्पररी व्हीकल दी गई है यूज करने के लिए, अगर यूज नहीं ठीक से की तो भारी हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ओनरशिप मत लो, टेम्पररी मुझे ये पार्ट असाइन किया गया है। इसीलिए बाबा के वो शब्द मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, जैसे ही गीत बजता है मैं वो दो शब्द इधर लाता हूँ, निमित्त और निर्माण। मैं यहाँ निमित्त आया हूँ, मुझे भेजा गया, ड्रामा ने भेजा, बाबा ने भेजा, दादियों ने भेजा, बड़े भाइयों ने भेजा, मेरे को पार्ट प्ले करना है। जैसे ही इस रूम के बाहर जाऊं मैं भूल जाऊं क्या किया था मैंने। कितने ही सेंटर जाते हैं, मैं जैसे ही ट्रेन में बैठता हूं भूल जाता हूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या हुआ। अगर हम उससे अटैच हो जाएं तो वो भी तकलीफ देना चालू होता है। सबसे बड़ा दुख अटैचमेंट से ही आता है। तो ये हमारा ईगो कॉन्शियसनेस है जो हमें चिपकाता है, और ये हमारा बाबा का अनादि क्वालिटीज जिससे हम बने हुए हैं, यही हम हैं। ये सात गुण हम हैं। आत्मा है क्या? अल्टीमेटली आत्मा ये सेवन कोटिंग्स की बनी हुई है। ये सेवन कोटिंग्स मेरे में है तो मैं सोल कॉन्शियस हूं। ये सात चीजें मेरे में नहीं है, कुछ कम है, ये कुछ कम है तो मैं क्या करूंगा? मैं संपूर्ण नहीं हूं, मेरे में इम्परफेक्शन है। इन सात इम्परफेक्शन का अर्थ ही होता है कहीं ना कहीं ये सात गुण मेरे में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा इन सात गुणों को लेने के लिए? अल्टीमेट टोटल साइकोलॉजी यहां आके खत्म होती है, जिसको हम आजकल कहते हैं एसक्यू कंसेप्ट, ईक्यू कंसेप्ट एंड एसक्यू कंसेप्ट। ये एसक्यू कंसेप्ट है। एसक्यू कंसेप्ट यानी अल्टीमेट आदमी की भूख, क्रेविंग, ये है। मास्लो ने कहा था, इब्राहिम मास्लो ने कहा था, उसने भी अपना लैडर बनाया था, बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट था, बहुत अच्छा लैडर उसने बताया कि आदमी की भूख कैसे चलती है। पहली भूख उसकी चालू होती है रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड भूख उसकी चालू होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। तीसरी चीज चाहिए उसको सोशल नीड्स, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं लॉयंस का ये हूं, सोशल नीड्स। ये भी उसकी पूरी हो जाती तो चौथी नीड चालू होती ईगो। ईगो यानी गर्दन अकड़ना चालू हो गई। जैसे ही परिचय मेरा दिया गया मैं डायरेक्टर हूं, गर्दन अकड़ी। अब जितना ज्यादा गर्दन अकड़ेगी तो आर्थराइटिस और स्पॉन्डोलाइटिस आएगी, प्रॉब्लम आएंगे। तो ईगो कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस। इसीलिए इंडिया में जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम सभी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, तो अंग्रेज क्या सिखा गए? अंग्रेजों ने पूरे विश्व को खत्म किया, तो वो क्या सिखा गए? जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओ टाइट होते जाओ। तो इसीलिए उनका जो सिस्टम था, बॉस पीछे सब इधर, बॉस चुपचाप आए कम वहां से पैदल करते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वो कुछ नहीं बोलेगा, चले जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, शाम हो गई वापिस चला जाएगा। लोगों को मिलना है तो उसके पास जाएंगे, सर कैन आई कम, कहेंगे रिस्पेक्टेड सर, ये सर, सब उन्होंने ये टाइटल्स बनाए। अब जैसे ही अमेरिकन सिस्टम आया, उन्होंने कहा ये तो सिस्टम बहुत एनर्जी खाता है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम ने सबसे ज्यादा एनर्जी खाई, फाइल सिस्टम। एक फाइल वहां से चली वहां तक आते आते सालों लग गए। अमेरिका ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कुछ। उन्होंने कहा आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। लीडर वहां क्या करता है? वो बाहर निकलता है, सबसे बात करता है, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। वहां इंट्रोड्यूस यहां करते हैं किसी को, ये मिस्टर, ये डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, मिस्टर सिंह। अमेरिका में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये मिस्टर सिंह है, सीईओ है। क्या फर्क हो गया? एक लेवल को इंपॉर्टेंट दे रहा है, एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दे रहा है। इसीलिए अमेरिका ने नंबर वन ले लिया, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दिया, लेवल को नहीं दिया। पर आज भी हम वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, टाइटल और लेवल को पकड़कर चलने की कोशिश करते हैं। इसी के कारण डिस ईज हो जाते हैं। डिजीज कुछ नहीं है, डिस ईज, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा हूं। किसको कंट्रोल कर रहा हूं? लेवल को कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं, मेरे को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, टाई लगाना चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है सूट पहन के जाना चाहिए क्योंकि मैं स्पीकर हूं। और अमेरिका में आप देखो कोई वो पहनते नहीं सूट टाई, उनको जरूरत है तो पहनेंगे, नहीं पहनना है तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि गर्मी है अभी सूट की जरूरत नहीं। यहां लगेंगे अरे इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, साइंटिस्ट के सामने जा रहे हैं तो कोट टाई तो जरूर पहनना चाहिए। तो ये क्या हो गया? और घेरा बनाते जा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं। पसीना आ रहा है फिर भी बेचारा वो कोट को दिखा रहा है, अपने उसको नहीं दिखा रहा। तो इसको कहते हैं डिस ईज कॉन्शियस। ईज को छोड़ दिया, अब उसका पूरा ध्यान कहां जाएगा? उस कोट पे जाएगा, बार बार उसको ठीक करेगा। इसीलिए कभी भी भाषण करने जाओ पहली बार, अपनी नेचुरल ड्रेस में जाना, कभी नया कपड़ा पहन के मत जाना। हो सकता है उसी दिन वो सिलाई खुल जाए, क्योंकि नए कपड़े की मालूम नहीं। तो इसीलिए नेचुरल ड्रेस पहन के जाना जो आपको सूट करती है। कोई जरूरी नहीं आपको एक्सटर्नल ये पहनने की। जब आप बहुत बड़े हो जाओ, ठीक है, आपको लगता है ये प्रोटोकॉल है तो पहनो, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, पर बी नेचुरल। और उसी को कहते हैं सोल कॉन्शियस, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, जो हमारे अंदर काम कर रही, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं कहीं भी प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, सेंटर की जोनल इंचार्ज बन जाऊं तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो सूखापन आएगा, ड्राइनेस आएगी। इसलिए इन सात को हमेशा भरते रहो कि मेरे में है, संपन्न है। ये सात नहीं है तो मुझे क्या चाहिए? फिर बाहर से चाहिए, जो मास्लो को कहा ईगो। ईगो वाले को क्या चाहिए? एप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन। हर एक व्यक्ति को बेसिकली साइकोलॉजी में कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। तो रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इसलिए कई लोग अपना लेटर हेड इतना बड़ा बना देते हैं, उसमें मैं इसका प्रेसिडेंट हूं, इसका प्रेसिडेंट हूं, पास प्रेसिडेंट हूं, ये प्रेसिडेंट हूं, और बीच में प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल छोटा सा रहता है। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है? मैं कुछ हूं। और फिर नेक्स्ट लेडर उसने दिखाया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, और लास्ट में दिखाया सेल्फ रियलाइजेशन का। और यही बाबा हमें सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है कि तुम ये हो, अगर ये ठीक है तुम्हारे में तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से कोई घबराना नहीं। ये मेरे में है, मैं चाहे कहीं भी हूं, ये मेरे में है, तो डर खत्म हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो हम देख रहे हैं सरेंडर्स में और दूसरों में भी, डिप्रेशन एंड इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी से आदमी बीमार होता है। कल क्या होगा, मेरे को, मैं नहीं रहा, मधुबन से चला गया, तो ये भी क्या है? अगर मधुबन से भी मैं अटैच हो जाता हूं और यहां से जाने में तकलीफ होगी तो लास्ट में क्या होगा? किसी को नहीं मालूम मधुबन वाला कहां होगा, सरेंडर वाला कहां होगा, घरग्रस्त वाला यहां होगा, किसी को नहीं मालूम। पर मैं अटैच हो जाऊं कि नहीं, यही मेरी जिंदगी है, यही है, और कल सिचुएशन चेंज होती, रोल चेंज करने में तकलीफ हो रही है, आने में अटैच हूं। इसीलिए एक सिस्टम में मैंने देखा वो लोग चेंज करते हैं, चेंज करते जाते हैं। और बाबा ने भी एक बार सोचा था चेंज किया जाए, तो उससे क्या होता है, जो अटैचमेंट है अपने जीवन से वो नहीं रहता। तो ये मैं हूं और इसको मुझे हमेशा करना है। अब होता क्या है, हम धीरे धीरे अपने जीवन में चीजों को पकड़ते जाते हैं। ये सात चीजें हम पकड़ते हैंगे अपने जीवन में। हर एक कोई कोई ना कोई चीज को पकड़ता है। और ज्ञानवान, जो बुद्धिवान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो काय को पकड़ता है? मेरी आइडिया ठीक है, मैं ही राइट हूं, बाकी सब गलत हैं, मेरे ओपिनियन को आप लोग देख नहीं रहे। और जो बाबा ने सिखाया ओपिनियन दो, भूल जाओ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जाने, बाबा जाने, तभी ये सबसे बड़ा दुख देता है। और इसी के कारण कन्फ्लिक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप में आते हैं। तो इसको भी हम ना पकड़े, आइडियाज, मेरी राइट, ठीक है, आप अच्छे हो, आपने आइडिया दी, अब उसको अप्लाई किया जाए या ना किया जाए, भूल जाओ, डिटैच हो जाओ। विनिंग एटीट्यूड, जीतने का, कईयों को रहता है मेरी, मैं सबसे अच्छा कराऊं, ये कराऊं, तो उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा काम करता है, सिंपैथिक सिस्टम। और सिंपैथिक सिस्टम ज्यादा काम करेगा, लेक्चर के बाद फिर वो थक जाएंगे, धीरे धीरे अल्सर चालू हो जाएंगे। तो ये भी मत करो, गो एंड प्ले योर गेम नेचुरली। जो स्टीव वॉक की बात याद आती है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की, जो अभी रिटायर, अभी तो हट गया, उसने अपने कोटेशन में कहा था, मैं अपने प्लेयर्स को कभी ये नहीं कहता यू प्ले मैच लाइक दिस, यू हैव टू डू दिस, वो कहता है यू प्ले योर गेम नेचुरली, गो एंड प्ले योर गेम नेचुरली। तो जब गेम नेचुरली प्ले करेंगे तो डर होगा ही नहीं। मैं यहां के बैठ गया, अब बाबा को जो काम कराना है कराए, मैं क्यों टेंशन लूं, बाबा ही कराएगा, बाबा का यज्ञ है, बाबा ने गोल्डन एज बनाई है, मैंने थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो केवल हाथ दे रहा हूं। तो बाबा को ज्यादा टेंशन होगा कि इस आत्मा से काम कराएं कि नहीं कराएं, पर उससे करोगे कि नहीं मैं ये चीजें कराना है, ये पॉइंट सुनाना है, अरे दो पॉइंट भूल ही गया, बाद में कईयों को इसका टेंशन आ जाता। कुछ नहीं, गो एंड प्ले मैच अकॉर्डिंग टू टाइम, जस्ट गो एंड नेचुरल सांस लो, बाबा को बोलो आई एम रेडी, देन स्टार्ट प्लेइंग योर मैच एवरी डे। तो अनसर्टेनिटी से क्या होता है, डर पैदा होता है, और जो व्यक्ति जितना डरता है वो ज्यादा इकट्ठा करता है। अरे 10 टिकट ले लूं, 10 ये चीजें रख दूं, एक जूता खराब हो जाएगा तो दूसरा जूता चालू करूं। तो आपने देखा आज की दुनिया में करोड़ों रुपए का गबन क्यों हो रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है। खाने की जरूरत उसको मेरे ख्याल से 1-2 लाख की होगी महीने की, पर करोड़ों रुपए 100-100 करोड़ के गबन हो रहे हैं, यानी क्यों हो रहे हैं, डर, फियर, फ्यूचर में मेरे को काम में आएगा। और जब वो चीज आती है तो अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट आएगा तो हम उसको होल्ड संभाल के रखने की कोशिश करेंगे, खराब नहीं हो जाए, और फिर हमारे में वापस साइकिल ये चालू हो जाएगा। और जितना व्यक्ति अटैच होता है अंदर से खाली होता जाता है, खाली होता जाता है, अंदर से खाली, बाहर से चॉकलेट भरने की कोशिश कर रहा है। एक बर्तन में लें, नीचे से पेंदा नहीं, उसमें कितने भी केक और चॉकलेट डालें तो क्या होगा, खाली होता जाएगा। फिर कहेगा नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका कोऑर्डिनेटर बना दो, मुझे इसका ये बना दो, तब तक मेरी जिंदगी ज्ञान में ठीक नहीं। आप कुछ भी नहीं हो, सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो कुछ नहीं है, उसको टेंशन ही नहीं। देखो हमें कोई टेंशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को लोड ही नहीं, सब बड़े बैठे हैं, वो लोग टेंशन लेंगे, अपन नेचुरल रहो, इजी रहो। तो जो कुछ नहीं है वो ही आगे जाता है। तो ईगो का अर्थ है एज गॉड आउट, एज गॉड आउट, एज गुड आउट। जब मैंने अपने अंदर से गॉड को भगा दिया, नहीं मैं हूं, ईगो वाला क्या कहता है, मैं सूरज हूं, बाकी तुम सब सितारे हो, तुम चक्कर मारते रहो मेरे आगे। तो एज गॉड आउट हो जाता है तो तब मैं और मेरा आता है, और उससे बीमारियां चालू हो जाती है। बीमारी का मेजर रीजन यही है, और यही इंडियन माइथोलॉजी में भी दिखाया है। एनर्जी का फ्लो चलता रहता है चक्रों के अंदर, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत गहरा सब्जेक्ट है। मेन ऑर्गन हमारा हार्डवेयर ब्रेन है, ब्रेन इज ए हार्डवेयर, जहां से पूरे कंट्रोलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, बॉडी में मैसेजेस को भेजते रहते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन में बिलियन सेल्स हैं, ट्रिलियन कनेक्शन हैं। कनेक्शन तभी ब्रेन में ओपन होते हैं जब हमारी थिंकिंग अच्छी होती है, अगर पकड़ ली हमारे तो वो ब्रेन के कनेक्शन भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्लॉक पहले कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में होता है, फिर ब्लॉक बॉडी में चालू होता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सभी अच्छी तरह जानते हो, माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कारा, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, ये पावरफुल है, तो ये जो भी विचार आएगा उसको फिल्टर करेगा, रोकेगा, ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं, तो वो उसको वहीं का वहीं स्टॉप करेगा, ये फिल्टर ठीक नहीं है, तो सीधा हमारे एक्शन में जाएगा और प्रॉब्लम आएंगे। विचार दो तरीके से ही आते हैं, एक बाहर से आते हैं 5 सेंसेस से, और एक हमारे पुरानी रिकॉर्डिंग से। दो तरीके से विचार पैदा होते हैं। अगर हमने पुरानी रिकॉर्डिंग को कम करना है तो इनपुट को भी हम कम करें, और केवल हमारे अंदर जो अनादि संस्कार इटर्नल हैं, आदि संस्कार जो पहले से पड़े हुए हैं, उनको बार बार अगर हम इमर्ज करते हैं तो हमारे जो पुरानी फाइलें हैं वो कम यूज होती है। माइंड और बॉडी, माइंड सोल ब्रेन बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अगर मेरा सिस्टम कहीं वीक है तो बीमारी यहाँ से उस सिस्टम से निकलेगी। ये देखा गया, हर एक के अंदर अपने अपने जीन्स होते हैं, हर एक के अंदर एक न एक सिस्टम होता है। पर सबसे अच्छा एक कोटेशन मुझे अच्छा लगा, जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफ स्टाइल इज द ट्रिगर। जीन्स क्या है, ये बंदूक है, इसके अंदर जो टॉर्च के बैटरीज पड़ी हैं वो जीन्स हैं, पर इस बटन को दबाना किसके हाथ में, जीन्स आर लोडेड गन्स, ये गन है, तो इसका बटन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में. लाइफ स्टाइल, अगर मेरी लाइफ स्टाइल ठीक है तो जीन्स खुलेंगे नहीं, लाइफ स्टाइल खराब है तो जीन्स जल्दी खुलेंगे. इसलिए आजकल अर्ली एज में हार्ट डिजीज आ रही है, अर्ली एज में डायबिटीज आ रही है. क्यों आ रही है? क्योंकि जब हम बहुत इमोशनल कन्फ्लिक्ट यहाँ करते हैं. ज्ञानियों को क्या प्रॉब्लम है? इमोशनल कन्फ्लिक्ट. ज्यादातर मैंने देखा हमारे भाई बहनों के प्रॉब्लम अपने ही कन्फ्लिक्ट से वो बीमारी पैदा करते हैं. वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा. तो माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड, और जो चीज हम ब्लॉक करते जाते हैं वो हमारी एनर्जी को खाना चालू कर देता है. ये आप देखें कि यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो गई. अब मेडिटेशन में हमें क्या करना है? उन ब्लॉक्स को खोल देना है. जैसे ही कोई चीज यहाँ अटकना चालू होए, मुझे लग रहा है हार्ट बीट तेज हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, निराशा आ रही है, खुशी गायब हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने किसी चीज को यहाँ बिठा दिया है. उसी समय मैं घूमूं और बन जाऊं, वॉक करूं या खड़े हो जाऊं, अपने हाथ को खुला करूं. आप भी ये एक्सरसाइज अभी कर सकते. हाथ को ऐसा करिए, एनर्जी को आने दीजिए. जो मेरे पास है मैं पास ऑन कर रहा हूं, जो मेरे पास है वो पास ऑन कर रहा हूं, और परमात्मा मुझे और दे रहा है. मैंने पास किया, मेरा मेजर वर्क है दूसरे को पास करना. तो जब कभी यहां आए उसको पास ऑन कर दो, वो जाएगा खुद ही. विचार वो जो अटक गया है वो निकल जाएगा. यहां बिठा के मत रख दो. यहां आपने उसको चाय पानी पिलाया, हाँ आ जाओ आ जाओ, तो वो बैठ जाएगा. वो तो वेट कर रहा है, कहां से इसको हमला करूं. ये लोगों ने ज्ञान ले लिया, बहुत शक्तिशाली हो गए, तो वो ढूंढता रहता, माया ढूंढती रहती है. तो माया उसी रूप में आती है जिसमें हम कमजोर हैं. उन सात चीजों में से एक में कमजोर है तो माया उधर से ही आएगी हमला करने. तो कभी भी कोई चीज को अटकने नहीं दें, कहीं भी रहें, कोई भी पार्ट है, किसी को कोई भी स्ट्रेस है, हर एक को होता है, पर उसी समय उसको मैं यहाँ कंप्यूटर में बैठने न दूं, उसको जाने दूं. आपको कोई भी डांट रहा है, बहुत जोर से डांट रहा है, आप चुपचाप सुनते रहो, अंदर ही अंदर संकल्प चलाओ कुछ न कुछ इसको तकलीफ है, मैं डॉक्टर हूं, कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम हो रहा है. बीपी इंस्ट्रूमेंट साथ में रख लेना. बेंजी बेंज आपका, मैं ब्लड आपका, जिस जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लग जाओ. मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप गुस्सा मत करो. गुस्सा करेंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम आता है, लीवर के ऊपर प्रॉब्लम आता है. आप लोग नहीं बोलना, टीचर्स नहीं, ये लोग हस्बैंड वाइफ, जो लोग हस्बैंड वाइफ है वो लोग बोल सकते हैं. हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अगर कोई कुछ बोले आप सुनो, शांति से सांस लेने लग जाओ तो गुस्सा आपका निकल जाएगा. सामने वाला तभी गुस्सा करता है जब आप प्रभावित होते हो, ये दूसरी साइकोलॉजी है. अगर आप रोने लग गए, चेहरा डाउन हो गया, उसको और मजा आएगा, हा अब मजा आया. पर अगर वो बुलेट फेंक रहा है, आप हंस रहे हो, तो चुप. तीन बार होगा, चार बार होगा, फिर पांचवी बार सोचेगा तो सही, मेरे इतने गुस्से का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है, बल्कि इसकी स्टेज अच्छी है, मेरी स्टेज डाउन है. जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और आप भी गुस्सा करते हो तो इसका मतलब वायरस आपने ले लिया, आप दूसरे व्यक्ति से कंट्रोल्ड हो गए, वो कंट्रोल कर रहा है. पर अगर मैं अपना मास्टर हूं तो मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल शिव बाबा से. एक व्यक्ति को हमने जीवन दिया है केवल परमात्मा को, बाकी किसी को नहीं दिया. बाबा ने कभी नहीं कहा कि किसी को देखो, आप केवल उसको देखो, शिव बाबा को दो. अगर फिर भी फाइल अटक गई है तो मैं तो ये करता हूं, जाके बाबा के रूम में बैठता हूं, बाबा को कहता हूं ये फाइल सॉल्व नहीं हो रही है मेरे से, ले ले तू. मैंने देखा बाबा खुद ही सॉल्व करके देता, किसी को मैं बड़ों को जाके कहता नहीं, कुछ भी नहीं कहता. जब दादी पूछती है कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक हो, ओके ओके ओके, तो यही दादियों को सबसे अच्छा लगता है. दादी जानकी इस बार तीन बार आई, कुछ भी प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व करना है, दादियों को नहीं बोलना है. तो उसी लेवल पे हम, मैंने कहा मेरी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि टीम में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी जैसे हैं. तो उस चीज की फाइल को हम भगवान को दे दें, इसीलिए तो वो बैठा है संगम पर, वो बैठा ही है लेने के लिए. पर हम क्या करते हैं, देते ही नहीं है उसको, तो वो मजे करता है, हम टेंशन में आते हैं. टेंशन तो उसको होना चाहिए, लो बाबा ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं होता, आप लो,
वो खुद ही कराएगा। जब हम देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए बाबा का मंत्र छोड़ो तो छूटे। छोड़ेंगे ही नहीं तो बाबा मजे करता रहता है। जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल है, द्रौपदी बुला रही थी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर क्या कर रही थी, एक गलती साड़ी को पकड़ी हुई थी। अब जैसे ही उसने साड़ी को छोड़ा और वो आ गए, श्री कृष्ण देख रहा था, होल्ड कर रही है। इसीलिए सरेंडर मीन्स टोटल सरेंडर, टेक केयर, वो करेगा। जब सरेंडर लाइफ की है हमने, तो हम क्यों चिंता करें, वो आएगा। खाली हमारा काम है एक कदम उठाओ, बाकी उसका काम है धक्का मारना, उठाओ। वो एग्जाम्पल सुना दिया, वो अभी नहीं सुनाते, चलो लेक्चर फिर खत्म नहीं होगा। ये है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ है अब्सेंस ऑफ नीड टू होल्ड ऑन एनीथिंग। किसी भी चीज को हम होल्ड ना करें, उसी को डिटैचमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल ओपिनियंस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने यंगस्टर्स बहनों को देखा, उनका प्रॉब्लम है एक्सटर्नल ओपिनियंस। स्पेलिंग गलत है, आप उस पर मत जाना। एक्सटर्नल ओपिनियन यानी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, मेरा ओपिनियन उसके, मेरा ओपिनियन उनके कंप्यूटर में कैसा है। आप किसी के ओपिनियन पर अपने को डिपेंड मत करो, नहीं तो कहीं ना कहीं हार खाओगे। इसीलिए मेरे को बहुत अच्छी क्लास याद आई ब्रायन भाई की, स्ट्रेटजीज ऑफ डॉल्फिन। उस क्लास में उन्होंने पहली पॉइंट दी, आप किसी को भी ज्ञान में आने के बाद अपना आदर्श मत बनाओ। आदर्श केवल शिव बाबा हैं, दादियां हैं, बाकी सब हम सारी के एक जैसे हैं। एक को किसी को आदर्श बना लिया और आपका आदर्श अगर डिस्टर्ब हुआ तो आप भी डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए बाबा बार बार यही पाठ पक्का कराता, नन बट वन, एक बाप बस। उसको जरूर मदद मिलेगी जो 100% एक बाप से जुड़ा हुआ है, बाकी कहीं ना कहीं अगर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हार खाएंगे। इसी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ब्रायन भाई ने दादी जानकी से, दादी जानकी मैं भी सरेंडर होना चाहता हूं, मैं इतना बिजी रहता हूं, सेवा नहीं कर पाता हूं। चार्ली भाई बहुत अच्छा है जो ऑस्ट्रेलिया देखता है, वो सरेंडर है, देखो वो बाबा की कितनी सेवा करता है। दादी जानकी ने उत्तर दिया, बाबा डोंट नीड सेकंड चार्ली। तो ये होता है डिटैचमेंट। हर एक का रोल जो दिया गया है अच्छा है। कंपैरिजन ना करें कि मैं सरेंडर होकर बहुत अच्छा योग करूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक अभी हम देख रहे हैं, यहाँ आते हैं कहते मैं वहां यहाँ आऊंगा तो मेरा योग अच्छा होगा। मैंने कहा तेरा योग वहां अच्छा लगता है सेंटर पर? बोला नहीं। जब वहां नहीं लगता तो यहाँ कैसे लगेगा? अगर वहां अच्छा लगता है तो यहाँ अच्छा लगेगा, अगर वहां नहीं लगता है तो अच्छा यहाँ भी नहीं लगेगा। इसीलिए डिटैचमेंट मीन्स कि मैं अपना बैंक अकाउंट नहीं हूं। कई लोग अपना को बैंक अकाउंट समझते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, वो समझते हैं कि मैं ही बैंक अकाउंट हूं। डिटैचमेंट मीन्स मेरा कोई अकाउंट किसी से नहीं है। इसलिए पहला प्रिंसिपल है डिटैचमेंट का, एक्सेप्ट जो मैंने बताया, जो पाठ दिया है बहुत अच्छा है, जहां भेजा है बहुत अच्छा है, मुझे इसको एक्सेप्ट करके पूरा करना। एक्सेप्टेंस का अर्थ है मैं अपनी गलतियों को भी जानता हूं और परफेक्शन को भी जानता हूं, मेरे में दोनों चीजें हैं। मेरे को डिप्रेशन नहीं आए, कभी कभी ऐसा होता है, प्रॉब्लम आते हैं, गलती होती है, कोई बात नहीं, गलती को करेक्ट करना है, उसका भी टेंशन हमें नहीं आए। नॉन जजमेंटल, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर डिटैचमेंट के लिए चाहिए। नॉन जजमेंटल का अर्थ है कि जब हम दूसरे को अपने आईने में देखना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण आज हमारे भाई बहनों में जो घर ग्रस्त में रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने आईने में देखना चाहते हैं। माता पिता ज्ञान में है, बच्चा ज्ञान में नहीं चल रहा है, टेंशन। अभी मैंने 3 महीने पहले एक कपल को देखा, फादर को देखा, फादर को कोरोनरी ब्लॉक है, हार्ट डिजीज। फादर बिल्कुल ठीक है, वेट ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ज्ञानी है, फिर भी ये प्रॉब्लम लेकर आया। तो जब उसका साइको एनालिसिस किया गया, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की ब्रह्मा कुमारी है, एक लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं बनना ब्रह्मा कुमारी, मुझे अपने जीवन में आगे जाना है। अब ये फादर क्या सोच रहा है, तुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही चाहिए। उसको वही टेंशन से ब्लॉक चालू हो गया, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर यहाँ जो डैमेज करता है कोरोनरी आर्टरी को, वो स्ट्रेस करती है। डैमेज होता है तब कोलेस्ट्रॉल चिपकना चालू होता है। कोलेस्ट्रॉल तभी चिपकेगा जब वहां रफ हो गई है सरफेस। रफ नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल हाई भी हो तो बीमारी नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर रहता है और वो चालू होता। हमारा काम है अगर उनको डायरेक्शन दें चले या ना चले। अगर हर कोई मेरे जैसा हो जाए, मैं जनरल मैनेजर नहीं हूं इस दुनिया का, अगर सब मेरे जैसे ही सोचें और करें तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए हस्बैंड वाइफ का जो कॉम्बिनेशन ज्यादातर बनाया गया, अपने यहां कैसा बनाया गया, अगर हस्बैंड भी टाइप ए है, वाइफ भी टाइप ए है, तो बीमारी होगी होगी। इसीलिए ज्यादातर देखा गया अगर हस्बैंड ए है तो वाइफ बी है, अगर हस्बैंड बी है तो वाइफ ए है। एक बहुत गुस्सा कर रही है, दूसरा सुन रहा है चुपचाप। इसीलिए स्ट्रेंज को एंजॉय करना ही मेडिटेशन कहते हैं। एप्रिशिएट स्ट्रेंज क्वालिटीज इन ईच अदर। हस्बैंड वाइफ का मतलब ही क्या है? अननोन, एक गर्ल आपके घर आ रही है, उसके घर आ रही है, उसको मालूम नहीं इसका क्या है। कोई बाबा पहले थोड़ी वो भगवान बता देता है ये लड़की ऐसी है, ये प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा बता दे तो कोई शादी नहीं करे। वो कोई नहीं बताता। स्ट्रेंज मैरिज इज टोटली स्ट्रेंज गेम। और उस स्ट्रेंज गेम में क्या करना पड़ता है? एक दूसरे की कमियों को, अच्छाइयों को देखकर आगे चलना पड़ता है। ऐसे ही सेंटर पे होता है, कौन सी टीचर कहाँ जा रही, क्या क्वालिटीज है, किसी को नहीं मालूम होता। पर उस स्ट्रेंज क्वालिटीज को हम इंजॉय करें तभी तो मजा आता है। सीन आए ही नहीं, वही के वही सीन, मेरे को कोई सीन नहीं आना चाहिए, सब ज्ञान में चलना चाहिए, सब 4 बजे उठना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, एक नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, रहने दो, इजी। इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस करो, 2-2 मिनट बार बार देखो, बैठ जाओ 1 मिनट, और कुछ भी चीज को जज नहीं करना 1 सेकंड के लिए। इस समय जो हो रहा है बहुत अच्छा है, यहां जो भी बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, जिसने जो ड्रेस पहन रखी है बहुत अच्छी है, मेरे सभी साथी बहुत अच्छे हैं, जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं। देखो कितना अच्छा लगता है एंजॉय करने में। नहीं तो एक जगह में गया, वहां मेला था, हेल्थ मेला, वहां हमें गाइड्स की जरूरत थी, तो एक गाइड, एक अच्छी यंग गर्ल, 18 ईयर की कॉलेज गोइंग गर्ल आई। अब वो अपने कॉलेज से आती थी, समझाती थी, जाती थी। अब वहां जो टीचर थी उसकी इतनी अंदर जाके उसने वो बोला उसको, तू कल से इधर नहीं आना, कल से व्हाइट ड्रेस में आना, नहीं तो यहां नहीं आना समझाने। अब वो टीचर क्या कर रही थी? अपने को उसमें देखने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई कैसे भी आए समझाए, हमारा काम है बाबा का ज्ञान देना। मधुबन आए तो ठीक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सरेंडर है तो कोड ऑफ कंडक्ट है। वो तो एक यंग कॉलेज गोइंग गर्ल है, उसको कॉलेज भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, और आपका काम कर रही है, तो आपको तो थैंक्स देना चाहिए कि बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, पूरा काम करके आ रही है और 2 घंटे दे रही है, उसको थैंक्स दो, पानी पिलाओ, उसकी जगह तुम यही एक। तो ये क्या हुआ? जजमेंटल। काय को ये चीजें थोड़ी भाई, ये कोई चीजें कुछ दम है इसमें? ये तो एक ड्रेस है, बाबा ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं, जज करते हैं। वो वहां खाना खा रहा था, वो ये कर रहा था, अरे खाने तो खा रहा है तो उसका मतलब हमें क्या करना? वो जाके बहन जी को कंप्लेन करते हैं। एक स्टूडेंट इसीलिए गया, इतना अच्छा स्टूडेंट था, सीनियर था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, वो कहीं गया होगा तो एक स्टूडेंट ने टीचर को बोला, टीचर ने उसको बोला आप कल वहां क्या करने गए थे? वो बोला मेरी जिंदगी मेरे हाथ में, वो कोई बच्चा तो था नहीं, एग्जीक्यूटिव था, सीईओ था, आना ही बंद कर दिया। तो ये डिससर्विस भी नहीं करें हम, छोटी छोटी चीजों में अटका, हमें तो बाबा बेहद में ले जा रहा है, हदों में थोड़ी, जिसका जो पार्ट करेगा करने दो। मेरा काम है नॉन जजमेंटल, जो चीज हो रही, जो सीन हो रहा है अच्छा है। अगर आप निमित्त हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों को दे दो। अगर आपका कोई पार्ट नहीं है, जज मत करो, किसी को भी जज मत करो। और ये चीज भी सीख ली तो कभी ये कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, जज करना ही नहीं, किसी को जज नहीं करना। हर व्यक्ति इस ड्रामा में राइट है, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी याद आई जैन मास्टर की। जैन मास्टर के सामने दो चेले बैठे हुए थे, तीसरा देख रहा था। एक चेले ने कहा, गुरुजी गुरुजी ये बात ऐसी है ऐसी है। गुरुजी ने कहा यू आर राइट। दूसरे चेले ने कहा, गुरुजी ऐसी कैसे बात, वो ये कह रहा ये गलत है ऐसा है। उसने कहा यू आर राइट। जब दोनों चेले चले गए तो तीसरा जो देख रहा था, गुरुजी ये कैसा, एक राइट होगा, एक को बोला आप राइट, दूसरे को भी बोला यू आर राइट, तो गुरुजी ने कहा यू आर ऑल्सो राइट। तो ये चीज है, इस जिंदगी में कोई राइट और रॉन्ग है ही नहीं। हर व्यक्ति अपना अनादि पार्ट प्ले कर रहा है। अगर ये ज्ञान नहीं, जब ड्रामा का बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, फिर क्यों हम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं? उसको प्ले करने दो ना, उसकी कैपेसिटी इतनी है 2 घंटे योग करने की, तो क्यों आप थुकाई कर रहे हो उसकी? करने दो, लेट हिम डू, लेट हिम एंजॉय 1 आवर, 1/2 आवर, 5 मिनट्स। आप वो मत करो, और आप अपनी कैपेसिटी से ही करो। तो जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, किसी चीज को आज के बाद मुझे जज नहीं करना है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, डायनामिक है, यंग है, ब्यूटीफुल है, सब अच्छे हैं। तो ये जब आ जाती मेरे सामने, तो कितने यंगस्टर आते हैं, मैं तो यही कहता हूँ तू जो पार्ट प्ले कर रहा बहुत अच्छा प्ले कर, बहुत अच्छा प्ले कर। किसी से पूछ मत, अगर पूछेगा कि मैं सरेंडर हूं नहीं हूं, एक कहेगा हाँ, एक कहेगा नहीं, एक कहेगा हाँ, तो तेरे को 10 ओपिनियन मिलेंगे, कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तू अपने आप से पूछ मैं क्या चाहता हूं। ज्यादातर पेरेंट्स का स्ट्रेस मैंने देखा, बाहर वालों का भी, वो अपनी पर्सनालिटी से बच्चे को देखना चाहते हैं, जबकि हर आत्मा अलग अलग है, हर एक में अपना अपना पार्ट पला हुआ है। कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हर एक की क्रिएटिविटी अलग अलग है। हमारा काम क्या है, उसको फ्लो करने देना, फ्लो करने दो। हस्बैंड वाइफ भी हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए फ्लो करने दो। वाइफ में जो क्वालिटी है करने दो, हस्बैंड में जो क्वालिटी है करने दो। अगर IIT का प्रोफेसर है और गोल्ड मेडलिस्ट है, और वाइफ हाउस वाइफ हो कहेगी अरे ये नहीं, इसका सोल्यूशन ये है। एक लेडी को देखा, वो डिप्रेशन में गई क्योंकि उसका हस्बैंड क्या था, गोल्ड मेडलिस्ट IIT, तो वो हर चीज का सोल्यूशन देता था, ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब वो लेडी धीरे धीरे सोचने लग गई, मैं तो कुछ नहीं हूं, यही बहुत अच्छा है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो उसकी जो इनहेरेंट कैपेसिटी थी खत्म हो गई, वो कहती है अच्छा इसको ही करने दो। वो डल होती गई, डिप्रेशन में गई। इसीलिए बाबा क्या करता है, हमको खड़ा करता है। बाबा ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें गेम आगे क्या होगा वो बताऊंगा, बाबा हमें खड़ा कर देता है, कहता अब तू लड़ मैच। तो इसीलिए बाबा बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, आप अपने कंप्यूटर को ठीक रखो तो फिर वो टचिंग देता रहेगा। तो बाबा का काम है खड़ा करना, और लीडर का काम भी क्या है, खड़ा करना, मैच में खुद आना। लीडर आगे नहीं जाए, लीडर दूसरों को भेजे, दूसरे आगे बढ़े। अगर मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही क्लास कराऊं, हर कॉन्फ्रेंस में मैं ही आऊं, तो वो छोटी छोटी बहनें क्या करेंगी, कहेंगे ठीक है करा। एक सेंटर पे गया, बहुत बड़ा सीनियर भाई था, छोटी छोटी 3-4 बहनें थी। मैंने देखा इतना पुराना सेंटर, स्टूडेंट 10 और वो बहनों की कैपेसिटी 0, कुछ भी नहीं। तो देखा वही भाई क्या कर रहा है, फोन करता है वही उठाएगा, फोन नहीं उठाना कोई भी, फोन मैं ही उठाऊंगा। सब्जी लेने जा रहा है, सब्जी मैं ही लेके आऊंगा। VIP को कार्ड देना है, मुझे ही जाना है। स्टेज पे भाषण करना है, मैं ही करूंगा। तो वो मुरली पढ़ना है, मैं ही पढ़ूंगा। अब वो बहने कहती है ठीक है, हम तो मजे करें, खाए पिए और रहे, उनको बहुत अच्छा मिला तो उसको भी इंजॉय करो। जो ऐसे सेंटर रहते हैं, मैं उन बहनों को कहता हूँ अच्छा है ना, कितना अच्छा पाठ मिला है, खाओ पियो, योग लगाओ, कर रहे हैं ना। पर हमारा काम है एज ए लीडर, एज ए गुड लीडर, एज ए शिव बाबा ने जो किया, जो ब्रह्मा बाप ने किया, आगे बढ़ाना, शेयर होल्डर बनना। आप नहीं करो, आपके छोटे करें। कितना अच्छा लगता कोई यंग होके खड़ा होके लेक्चर देता है, उसकी जो दुआएं मिलती है उससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। ये मैंने अपने लाइफ में यहाँ आके सीखा कि वो जो फीलिंग है योग से भी नहीं आती, उसकी दुआ से आती कि वो एक छोटी बहन खड़ी हो गई, भाषण करने लग गई, हजारों का वो करेगी। तो इसलिए हमेशा छोड़ना आना चाहिए, कहाँ छोड़ें कहाँ पकड़ें। हमारा काम क्या है, मेरे को ऐसा पार्ट मिले बहुत अच्छा हो जाए, मैं तो बस बैठ जाऊं योग लगा, हाँ खाली योग के लिए मुझे बुला लेना, मैं योग लगवाऊंगा। कितना अच्छा पार्ट है, भाषण देना नहीं पड़े, ये इतना टेंशन होए, तैयारी करो, आराम से बैठो और योग को कराओ। तो एप्रिशिएट स्ट्रेंज क्वालिटीज, अपने में लिखो मैं बहुत ठीक हूं, मेरे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को सब प्यार करते हैं, मैं प्यार देते जा रहा हूं, हमेशा मुझे अच्छा ही मिलता है। नेक्स्ट, अब ये है टोटल कैसे हम इसको अप्लाई करें डिटैचमेंट को, क्या पॉइंट्स है। पहला जैसे मैंने बताया सरेंडर, एक्सेप्टेंस। सरेंडर का अर्थ है मैंने अपनी जिंदगी संगम पर भगवान को दे दी, लेट हिम टेक केयर ऑफ मी, मैं अपना विचार कुछ पैदा नहीं करूंगा। इनविटेशन आया गया, नहीं आया इनविटेशन एंजॉय, इसका मतलब मेरी जरूरत नहीं है बाबा को, मेरी बाबा को जरूरत इधर है, आराम से करो। सेवा है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छा। कई बहनों भाइयों को टेंशन आता है जब सेवा नहीं होती तो डिप्रेशन होता है, नहीं है सेवा ठीक है आप अपना योग कराओ। तो सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड, नो सेल्फ लेबल्स। कभी भी अपने लेबल्स मत लगाइए, मैं ये हूं कुछ भी नहीं, जीरो हूं, नो सेल्फ लेबल्स। अनकंडीशनल लव, किसी को भी प्यार दो, अनकंडीशनल दो, देवता जैसे खड़े हो जाओ, जो आ रहा है बहुत अच्छा वेरी गुड, जैसे शिव बाबा करता है ना, जैसे ही दादी बैठती है योग में आते है, बाबा ऐसा खड़ा हो बैठ जाता है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बाबा मुस्कुरा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई खाना खाता है क्या करता है, ना नियम धारण करता है नहीं करता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, कोई यहां से घुसने की कोशिश कर रहा है, बिना परमिशन के चढ़ने की कोशिश कर रहा है, दादियों ने नहीं बुलाया है, फिर भी कई लोग चढ़ जाते हैं, फिर भी बाबा को मैंने देखा कुछ नहीं करता, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वो अपने कर्मों को ही कर रहा है। बिना परमिशन के आप चढ़ो इसका मतलब क्या है, आप कौन हो, राजा नहीं हो, प्रजा हो। राजा कैसे होता है, राजा बैठा रहेगा जब तक मेरे को राजा नहीं बुलाए मैं नहीं जाऊं, जब तक शिव बाबा नहीं बुलाए या दादी नहीं बुलाए मैं भी किंग हूं, मेरा भी सम्मान है। सम्मान को खत्म करके ऊपर चढ़ रहे हो, यानी अभी मैं भिखारी हूं, अभी भी मेरे में इच्छा है, अभी भी भक्त हूं, अभी भी मुझे चाहिए, नहीं तो बाबा मूल्यों में इतना भर देता है आपको वहीं का वहीं बैठे दे देगा। तो हमेशा किंग जैसा बिहेवियर करो। तो अनकंडीशनल लव, खड़े हो जाओ देते जाओ, कोई भी आए आपके सामने, स्टूडेंट आए कैसे भी आए, कुछ भी कर रहे हैं आपके जूनियर सीनियर कैसे भी हैं, मेरा काम है प्यार देना अनकंडीशनल, वो दे या ना दे मुझे देना है, वो ओम शांति बोले या ना बोले मुझे जरूर मुस्कुराते रहना है। टर्न योर कॉम्पिटिशन इंटू कॉपरेशन, विन विन अप्रोच। आजकल पहले था विन एंड लूज, मैं जीतू तुम हारो, आजकल अप्रोच है मैं भी जीतू आप भी जीतो, एक सेंटर तीन सेंटर है शहर में, आप भी सेवा करो हम भी करें, नहीं तो प्रॉब्लम है, ये इधर से इधर मत आना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं भी सबके सेंटर बाबा के हैं, आपने पकड़ रखा है क्या, ये पृथ्वी पूरे बाबा की है, तो विन विन अप्रोच, मैच जीतने दो, मैं भी ठीक करूं आप भी ठीक करो, टीम अच्छी होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे बड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने सीखा, मेरे को भी इतना इसका नॉलेज नहीं था, ये बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट ने लिखा, बहुत फेमस उसकी किताबें हैं जो मुझे बहुत अपीलिंग की। एक तो था नॉन जजमेंटल, दूसरा था पास इट अलोंग, यानी जीवन में हमें क्या करना है, सर्कुलेट करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक ऐसी चीज को अभी लिखिए, चाहे आप ज्ञानी हो, जिससे आप बहुत अटैच हो, कोई भी चीज, चाहे मुरली की डायरी चाहे कुछ भी, ऐसी कौन सी एक चीज, ऐसी चीज लिखिए जिससे आप बहुत अटैच हैं, एक चीज लिखिए, सोच लीजिए, लिखो मत तो सोच लीजिए। और हर कोई कोई ना कोई चीज से अटैच होता है, 100% कोई डिटैचमेंट नहीं हुआ, अगर होता तो यहां काम खत्म हो गया होता, गेम स्वर्ग में बैठे होते। अब उस चीज को सोचिए एक मिनट के लिए, वो गायब हो गई, वो आपके पास नहीं है, चली गई, किसी ने चुरा लिया, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, घड़ी अच्छी लगती थी चली गई, मुरली की डायरी थी मेरी, कई सालों के 10 साल के नोट्स थे वो चले गए, क्या रिस्पॉन्स रहेगा बताइए। हाँ करेक्ट, कोई और इसको बहुत इंजॉय कर रहा है, किसी और को इससे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जब कभी कोई चीज चली जाए तो सोचो कोई और व्यक्ति मेरे से ज्यादा यूज कर रहा है। इसीलिए हर एक साल में कोई भी व्यक्ति है अपने अलमारी की चेकिंग करो। अलमारी में अगर कोई चीज ऐसी पड़ी हुई है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, क्या करो? दे दो। इसका अर्थ है वो मेरे लिए बनी नहीं है, किसी और को दो। अगर उसको रखते रहोगे तो आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। कई बार मैंने सुना, हमने कोर्स कराया, मैनुअल दिया, एक ही सेंटर की 6 टीचर्स को मैनुअल दिया, 7वीं आ रही है, मैनुअल चाहिए। मैंने कहा आपके 6 तो दे दिया, उससे लो। वो नहीं देती है, अलमारी में रख दिया है। एक जगह तो ये सुनने को मिला, उस टीचर ने उसका भी मैनुअल लेकर रख दिया। इसका अर्थ क्या है? हम लोग कहां छोटी छोटी चीजों में अटक गए? हमारा तो काम है आगे बढ़ाना, तो पास इट ऑन। इसीलिए जो मैंने कहा, लास्ट जो मेजर मैनेजमेंट का सिस्टम है, अल्टीमेट मैनेजमेंट है, जो अभी अंबानी के लिए भी कहा गया। पहला मैनेजमेंट होता है टेक्निकल, दूसरा होता है ह्यूमन, तीसरा होता है कंसेप्चुअल, चौथा होता है नेटवर्क। वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता है, वो व्यक्ति सरवाइव करता है जिसका नेटवर्क अच्छा है। आज के लेटेस्ट मैनेजमेंट में ये आया है, जिसका नेटवर्क कमजोर है वो व्यक्ति हार जाता है। चाहे मेरे पास टेक्निकल है, ह्यूमन है, फिर भी हार जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। ब्रह्मा कुमारीज भी क्या है? इज ए नेटवर्क। ब्रह्मा कुमारीज एक गुरु नहीं है, एक गुरु और बाकी सब चेले। ब्रह्मा कुमारीज का जो बाबा ने मैनेजमेंट सिखाया, वो सिखाया नेटवर्क का। नेटवर्क का अर्थ होता है, अगर जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपने डायरी इनको दी, इन्होंने आपको दी, आपका क्या काम है? हर व्यक्ति उस डायरी में और अच्छा लिखकर पास इट ऑन करेगा। इसको कहते हैं नेटवर्क। गिव पावर एंड नॉलेज टू नेक्स्ट टू इट। आप अगर अपना आप समान नहीं बना पाए सेंटर पर और कहीं पर, आप फेल्योर हो। बाबा ने जो लास्ट ईयर कहा, आप कितने भी सेंटर्स के इंचार्ज हो, कितने भी कर लिए, कितने भी कोर्स करा लिए, पर आप समान नहीं बनाया तो 0 नंबर है। अगर मैंने अपने समान बना लिया कि मेरे बाद कोई है इसको टेक केयर करेगा, यू आर द विनर। नेटवर्क का अर्थ होता है मेरे पास जो है, मैं नेक्स्ट जनरेशन को देके जाऊं, जैसे अब्दुल कलाम कर रहा है, जैसे अंबानी ने किया। अंबानी का टोटल सक्सेस उन्होंने लिखा, जो वर्ल्ड में एम्पायर बनाया, नेटवर्क का। नेटवर्क का अर्थ होता है हमारा हर स्टूडेंट इम्पावर हो जाए, हर स्टूडेंट, हर बहन। नहीं तो एक जगह फोन किया बहन को, टेलीफोन पर सीनियर बहन को, वो नहीं थी, जूनियर ने आंसर दिया। वो बहन कहाँ है? नहीं पता। कहाँ गई है? एक जगह गई है। फोन नंबर है? नहीं है। इसका मतलब मैं समझ गया कि नेटवर्क है ही नहीं, नेटवर्क 0। नेटवर्क का अर्थ होता है आपके साथ जो भी काम करने वाले हैं उनको कम्युनिकेशन पता रहे कि अंदर क्या सेंटर पर हो रहा है, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मैच को हारेंगे। आप गए तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स, जो आज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। गुरुज बैठे, गुरु गया, वो ऑर्गेनाइजेशन 50% आ गया। हमारे को बाबा ने ऐसा नहीं सिखाया है। हमें बाबा ने, ब्रह्मा बाप ने लिया मैसेज, मैसेज को दादियों को दिया, दादियों ने सेकंड जनरेशन को दिया, सेकंड ने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया। तो जब हमें नेटवर्क बनाना है तो हमारा हर स्टूडेंट पावरफुल बन जाए। इसको कहते हैं नेटवर्क। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में वर्टिकल होता है, बॉस टॉप पर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, ये है वर्टिकल। और ये है हॉरिजॉन्टल, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, वो जो गेम होता है ना, ये हर्डल का, 100 मीटर दिया, फिर उसने उसको दिया, वो तेज दौड़े, तीसरा भी दौड़े। हर्डल में अगर तीसरा वाला धीरे भागे, मैच हार गए। हर्डल का मतलब है तीनों जो टीमें हैं एक समान पावरफुल बने हैं। और वही सबसे बड़ी मैं कहता हूं यही हमें सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखो। ये सीख लिया कि मेरे बिना मेरा एक हम शक्ल तैयार हो गया है, मेरी क्लोनिंग तैयार हो गई है, मेरे बिना भी ये यज्ञ चलेगा, तो आपने काम पूरा कर लिया। बाबा देखो आपको प्रमोशन देगा। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो बाबा कहेगा ठीक है, यू स्टे देयर, अभी वहीं ठीक है, उतना ही संभालो। पर मुझे वर्ल्ड को देखना है, पूरा वर्ल्ड मेरा है, वर्ल्ड में राजा बनना है तो मुझे सबको देना है। और नेटवर्क वाला ही राजा बन सकता है जिसका नेटवर्क है अमेरिका में, अफ्रीका में, एक एक सोल को मैं देते जा रहा हूं। यही लोकली लोकल घूम रहा हूं, छोटी छोटी जगह बन रहा हूं, तो मैं ब्यूरोक्रेट हूं। ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है, हमें अपना नेटवर्क बनाना है। 7 पर्पस, पर्पस। जब यज्ञ में आए तो कुछ ना कुछ मेरा पर्पस है, परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, उसको डिटेल नहीं करते, टाइम हो गया अब लास्ट। तो अल्टीमेटली मेडिटेशन एक मेथड है जिससे हम अपने को, अपनी आत्मा को डिटैच कर सकते हैं इस शरीर से। आत्मा यहां बैठकर डिटैच होकर जब रहती है तो ब्रेन शरीर एक नेचुरल रिदम में चलते हैं, उसमें वही रिदम रहता है जो परमधाम में रहता है। इसीलिए कमल फूल का सिंबल दिखा गया, डिटैचमेंट मींस कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर रहना। ये भी नहीं सोचें कि हम वहां रहते हैं वहां बहुत नेगेटिविटी है, दुनिया इतनी खराब है, वो भी वीक है। कहीं भी रहें हम, उससे मुझे न्यारा और प्यारा बनना है। डिटैचमेंट मींस अपने रोल से डिटैच। नेक्स्ट, डिटैचमेंट मींस जब डिटैचमेंट होता है तो ब्रेन के हायर सेंटर्स में, ये पैट स्कैनिंग से लिया गया है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं पैट स्कैन किया गया तो उन्होंने देखा रेस्टिंग में और मेडिटेशन में ये फर्क था, ब्रेन के हायर सेंटर्स की एक्टिविटी बहुत नेचुरल हो गई थी, रिदम जिसको कहते हैं रिलम हो गई थी, और उस एक्टिविटी में शरीर के अंग भी बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, इजी काम कर रहे थे। जब यहाँ एक्टिविटी ज्यादा होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ भी चेंजेस आते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। तो लास्ट में है क्लियर योर पर्पस, व्हाई यू आर हियर एज ए ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, व्हाई गॉड हैज सिलेक्टेड मी। अगर ये क्लियर नहीं है तो हमारा डिटैचमेंट इजी नहीं होगा। ब्रह्मा बाप को क्लियर था पर्पस कि मुझे ये करना है, तो वो सब चीजों से सहज डिटैच हो गया। ये पॉइंट्स हैं, अगर मेरे में डिटैचमेंट है तो ये 10 चीजें मेरे में रहेगी। अब आप चेक कर लो लास्ट वाली, मैं सोचूंगा और करूंगा, जो सोचा वो किया, झगड़ा नहीं होगा पास्ट का और फ्यूचर का, हर चीज को एंजॉय करूंगा, हर सीन को एंजॉय करूंगा, मेरा लास्ट इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी को जज करने में, मैच को खेलते जाओ, कोई कैसा भी समझाने दो, उसको करेक्ट करो, पर उस समय उसको जज नहीं करो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, चिंता नहीं रहेगी, अप्रिशिएट करेगा, हमेशा अप्रिशिएट करेगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, छोटी बहन भाषण करके आए, पहला काम बड़ी टीचर का है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, और करें, तो उससे क्या होगा, उसका मॉरल बूस्ट होगा। फर्स्ट पे ही बोल दिया कि नहीं ये तो तूने गलती की, ऐसा किया, तो वो और डाउन हो जाएगी। तो हमेशा पीठ थपथपाओ, खुद की भी थपथपाओ और दूसरों की भी थपथपाओ, खुद की भी थपथपाना चाहिए। अगर आपकी सीनियर नहीं करता कोई पीठ, खुद अपनी थपथपा लो, आई एम गुड। रिवॉर्ड यूर सेल्फ एवरी डे, रिवॉर्ड बाबा देता है ना, रोज आके रिवॉर्ड देता है ना, अरे बहुत अच्छे हो, चिंता मत करो, मेरी डायरी में तुम्हारी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। बाबा के पास एक डायरी है, अगर उसमें हमारी रिकॉर्डिंग होती है तो बहुत अच्छा, दूसरों की डायरी में रिकॉर्डिंग होती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। इसीलिए एक बार जब नारद आया नीचे, हनुमान बैठा हुआ था, तो हनुमान को बोला, अरे हनुमान उसको बोला नारद को, तुझे मालूम है भगवान के पास एक डायरी है और उस डायरी में मेरा नाम सबसे ऊंचा है। नारद को टेंशन आ गया, गया भगवान के पास, भगवान भगवान वो डायरी दिखाओ। भगवान ने कहा कोई डायरी वायरी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वो बहुत पीछे पड़ गया तो भगवान ने उसको डायरी दिखाई, उसमें सबसे ऊपर नाम नारद का था। नारद बड़ा खुश होके आया, हनुमान को बोला मेरा नाम सबसे ऊंचा था। तो हनुमान ने बोला, अरे वो डायरी तो दूसरी है, वो डायरी तो भगवान के अंदर रहती है, दिल में रहती है। फिर इसको टेंशन आ गया, फिर गया भगवान के पास, भगवान वो मुझे डायरी दिखाओ। वो भगवान ने कहा, कोई नहीं, मैं वो डायरी किसी को नहीं दिखाता। बोला, नहीं नहीं मुझे तो दिखाना ही पड़ेगी, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। भगवान ने वो डायरी दिखाई, उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान का था। यही हमारा काम होना चाहिए कि हमारी रिकॉर्डिंग उसके कंप्यूटर में हो, बाकी के कंप्यूटर में हो ना हो, कहीं फोटो छपे या ना छपे, कोई बात नहीं, हमारी रिकॉर्डिंग वहां हो। नहीं तो कई टेंशन इसमें आता, अरे मेरा छपा नहीं फोटो, कोई बात नहीं, नहीं छपे, हमें प्रूव नहीं करना है। डिटैचमेंट का अर्थ है डू नॉट प्रूव योरसेल्फ कि मैं ये हूं, और न डिसप्रूव करना है, डू नॉट डिसप्रूव एंड डू नॉट प्रूव, मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं, बस सेवा की भूल गए, सेवा की भूल गए। दादी ने पूछा क्या था, सब अच्छा था बस, कोई नहीं। उसको डिटेल में खेच खेच के बताने लगे, ये हुआ बाबा मैंने इतना मारा, इतने लोग आए, इतने लोग क्लास कर रहे, कुछ नहीं, सब बहुत अच्छा रहा, बाबा ने जो मेरे से कराया अच्छा, डिटैच। नहीं तो वो भी अपनी सेवा भी अपने को खींचती है। तो इसीलिए लॉस ऑफ वरी, अप्रिशिएट, संतुष्टता, स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नहीं हंसना आएगा, मुस्कुराना आएगा तो डिप्रेशन आता है। तो कोई भी चीज हो, थोड़ा थोड़ा अंदर, सामने बड़ों के सामने नहीं मुस्कुराना, डांटे तो चुपचाप अलग जाके, अंदर मुस्कुराना और लव करना, प्यार देना। ओके, ओम शांति, थैंक यू। एक गाना बजाएंगे, बहुत अच्छा गाना है जो मुझे लगता है डिटैचमेंट पे। मैंने तो सोचा था आपको अच्छी कमेंट्री करा के डिटैच करूं, पर अभी ब्लड ग्लूकोज लो हो गई है, लंच टाइम हो गया है, तो फिर कभी मौका मिलेंगे तो आपको डिटैच कराएंगे। आप सीधे बैठना, इजी बैठना, और सब तरफ से ध्यान हटाते हुए अपने आत्मा को भ्रुकुटी के बीच स्थित कर लेना। सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो, हर तरफ से ध्यान हटाते हुए अपनी चेतना शक्ति को दो आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित करिए। ये मेरा निजी कमरा है, यहां पर बैठकर मैं सारे विश्व को, अपने शरीर को देख रही हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं, प्रकाश हूं, शरीर मेरा वस्त्र है, अब मैं आत्मा अपने आंतरिक जगत की ओर बढ़ती जा रही हूं। मैं अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं, डर है, परमात्मा को सौंपती जा रही हूं। अंदर की सभी फाइल्स को परमात्मा को सौंपते जाओ। सब सौंपते जाओ, अंदर की सभी कमजोरी डर परमात्मा को सौंप दो। मैं आत्मा इस शरीर से भी डिटैच होकर परमात्मा के सामने सरेंडर हो गए।
प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो। प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन का मल मुस्काएगा।
अब मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर अपने इस शरीर रूपी वस्त्र में शांति के वाइब्रेशन भेजते जा रहा हूं, मस्तिष्क से लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं में परमात्मा का प्रकाश फैलता जा रहा है।